سینٹر میں 75 ڈیری روڈ ویسٹ مسیساگا. مزید معلومات کے لیے کال کر سکتے ہیں عدنان سلیم
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد. جناب آج بھی آپ کا ہمارا ویسے تو 24 گھنٹے ساتوں دن اور قیامت تک رہے گا سلسلہ انشاءاللہ, لیکن اگر آپ ابھی ڈائل پر سن رہے ہیں تو 5:45 تک آپ ہمیں ڈائل پر سن سکیں گے. اس کے بعد آپ نے نمبر ڈائل کرنا ہے 6478724900 یا ہماری ویب سائٹ eawaz.com, اور ہمارا ای آواز ٹی وی تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر موجود ہے. وہاں بھی آپ 24/7 ٹرانسمیشن ہماری دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں اور انجوائے بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ لوگ ہمیں جو ڈائل پر سن رہے ہیں 770 AM پر, جناب 5:45 پر جو ہے آپ کو اب نمبر ڈائل کرنا ہوگا باقی آپ خبریں سننے کے لیے 6478724900. اور اسٹوڈیو پہنچ گئی ہیں اپنے 4 فالوورز کے ساتھ. میں نے ایک دن کا بریک لیا تھا لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں. چھوڑنا گھر تک نہیں جا کر, گھر تک بلکہ گھر تک جا کر چھوڑنا ہے. تو 4 فالوورز کے ساتھ وتھ ساؤنڈ افیکٹ کھٹی میٹھی خبریں. سردی بہت ہے کہہ رہی ہیں لیکن آپ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہوں گے, میری طرف تو سردیاں نہیں ہیں, گرمی ہے. لیکن آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیف حالک؟
زین یا حبیبی؟ کل
کبیر کبیر مشکل کبیر
مشکل معافی کبیر
بہت معافی کبیر
معافی کبیر
تمام تمام اللہ
ڈبلیو ایس کہتے ہو؟
الحمدللہ
جائے جائے
الحمدللہ. آپ بتائیے.
اچھا یہ تم جو ہے یہ گندے زیلنسکی کے گندے کلر یہ تم کیوں پہن کے آئے؟
اس لیے کہ زیلنسکی صاحب نے جو ہے وہ ابھی کل پرسوں ان کا میں دیکھ رہا تھا چل رہی تھی,
اتنے امپریس ہو تم اس سے.
انہوں نے کہا کہ جی وہ وی آر ان دا پروسیس ٹو اینڈ دس وار وتھ رشیا, سو مائی سپورٹ وتھ ہم. ہاں جو بھی جنگ بندی کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں.
اچھا ٹھیک ہے,
لیکن یہ اس کے ساتھ نہیں ہوں. جنگ بندی کرائے گی اس کے بعد بولے گا یہ ہمارا ہے ہم قبضہ کر لیں گے. اس کے ساتھ نہیں ہوں. یہ کہے گا کہ جی غزہ کی جنگ تو بند کرا دی ہے لیکن اب غزہ کو ہم حاصل کر لیں گے اور ہم اس کے مالک بن جائیں گے.
حاصل کر کے ان کو دے دیں گے نا اسرائیلیوں کو.
نہیں نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا. آپ نے ان کی پوری اسٹیٹمنٹ سنی؟
کہتے ہیں جناب پوری میں نے کل سنائی ہے پوری.
میں نے کل سنائی ہے. ہم بھی یہاں بیٹھتے ہیں نا, کام کرنے آتے ہیں.
نہیں تم کام کرتے نہیں ہو.
انہوں نے کہا جناب ہم اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیں گے, اپنے حساب سے کنسٹرکشن کریں گے.
جو ایکسپلینیشن آئی ہے وہی آج کی خبروں میں ایکسپلینیشن آپ کو بتائی.
میں پہلے سے دے رہا ہوں نا, آپ دیر ہو گئے.
نہیں
آپ لیٹ ہو گئے.
نہیں
میرے پاس اپڈیٹ ہے.
نہیں یہ اپڈیٹ نہیں ہے, اپڈیٹ کچھ اور ہے. اپڈیٹ وہ آپ کو مارکو روبیو نے دیا ہے.
وہ بھی مجھے معلوم ہے لیکن میں چاہتا ہوں وہ آپ بتا دیں. میں بیک گراؤنڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو فلسطینی بھائی ہیں ہمارے.
اور کل ہم نے سنایا ساری دنیا نے کیا کنڈیم کیا ہے, ساری دنیا کے کل کامنٹس ہم نے آپ کو سنائے ہیں, پر آپ ظاہر ہے سو رہے ہوتے ہیں, کام تو آپ کرتے نہیں ہیں.
ایسا کریں
تو آپ کو کیا پتا ہے.
میں جو ہوں وہ جیسن کینی بن جاتا ہوں. آپ خبریں سنائیں.
نہیں جیسن کینی تو بولتا تھا اور پھنس جاتا تھا. یہ جو تم چپ رہ رہے ہو یہ جیسن کینی نہیں بن رہے.
میں تو مائک بند کر دیا تھا اپنا. میں آپ سنائیں.
نہیں نہیں ہم سنائیں گے. ہم نے کل بھی سنائی تھی کہ ساری دنیا کے کون کون سے کنٹریز.
جو کل خبر آپ نے سنائی تھی نا وہ میں نے سی این این پہ صبح دیکھ لی تھی.
اچھا اچھا ٹھیک ہے. وہ آپ نے صبح جو دیکھی تھی نا وہ نہیں تھی جو 1 بجے آئی تھی.
مستی
کر
ان کو جب تک چھیڑو نہیں تو ان کا دن نہیں گزرتا.
ہائے ہائے ہائے
یہ بھی بہت ضروری ہوتا. میں ٹاپک ہی ایسی.
اچھا تم
بارے میں پن مار
کوئی بدتمیز انسان ہو, کوئی ایک بندہ کوئی روزہ لگا کے بیٹھا ہو,
مائی گاڈ
چھوٹی حرکتیں کر رہے ہو.
اچھا دیکھیں بڑی کوشش کر لی کہیں نہ کہیں اپنا روزہ لے آئے, لیکن پھر بھی میں پھر حلفن کہہ رہا ہوں 5واں فالوور پھر بھی نہیں آئے گا.
इस दहशत मजहब का कार्ड
कुछ भी लगा ले, ये मजहबी कार्ड खेल ले, कुछ भी कर ले।
पांचवा फॉलोअर नहीं है,
फॉलोअर नहीं आ रहा इनका,
फॉलोअर सिर्फ मेरे आएंगे। आमिर वैसे मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि तुम्हारी टिंड देख के 25,000 आदमी कैसे आए हैं भाई, मुझे बताओ इसका राज बताओ।
26,000
अलहमदुल्ला, मैं खुदकुशी ना कर लूं जाके।
कह रहा हूँ ना, गम ना करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचे आपके लिए अच्छा होगा।
हाँ, नहीं मैं कैसे अच्छा सोचूं भाई, हम इधर जो है 50 न्यूज़पेपर रोज पढ़ पढ़ के मर गए इधर खबरें दे दे के, और हमारे जो है 4 जो है फॉलोअर्स हैं, 4 साल से 4 यानी
एक फॉलोअर्स
देख लो,
प्रोग्रेस अच्छी
है,
प्रोग्रेस अच्छी है।
और तुमने एक दिन टिंड की पिक्चर डाली और तुम्हारे 26,000 है, भाई ये क्या चक्कर है? नहीं, ये तुम्हारी सोशल मीडिया टीम जो पाकिस्तान में बैठी है, ये मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन दिखा रही है और इसके खिलाफ मैं जो है आवाज उठाऊंगी,
ये
मैं बिल्कुल आवाज उठाऊंगी इसके खिलाफ।
इट्स योर चॉइस,
मुझे
यू आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री, यू कैन डू एनीथिंग।
एडी अंग्रेजी ना बोल, मुंह टेढ़ा हो जाएगा।
तो ये अपना अपना हिसाब किताब है
भाई, ये कैसा हिसाब बकवास है।
अच्छा सोचे, अच्छा होगा। हमारा फॉर्मूला एक ही है, 1+1 कितने होते हैं 2। हमें ना 2.5 पता है।
हाँ।
एक ब्लैक होता है, एक व्हाइट होता है।
अच्छा।
देर इज नो ग्रे एरिया इन माई लाइफ।
अच्छा अच्छा।
और ना ही मैं ग्रे एरिया को पसंद करता हूँ।
ओहो,
तो इस लाइफ को लेकर आगे चले इंशाल्लाह। अभी
दिन ब दिन ग्रे होते जा रहे हो,
मैंने कहा ये तो ग्रे होगा या ब्लैक होगा, व्हाइट होगा या ब्लैक होगा, ग्रे नहीं होगा।
मैं
आपको व्हाइट होता हुआ,
वही तो
व्हाइट को ग्रे समझ रही है, व्हाइट है, व्हाइट है।
अच्छा, मैं यानी कि मुझे भी आंखों का ऑपरेशन कराना है, $7,000
7,500।
अच्छा 7,500, थैंक यू फॉर द करेक्शन। हाँ, जाके मैं भी आंखों का ऑपरेशन करा लूँ।
यस, नहीं उससे आपको वो मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा।
अच्छा अच्छा अच्छा,
वो तो अदरवाइज आपको ऑपरेशन तो आप ऐसे ही जाके करा लें।
लेकिन
भाई कह रहे थे कि उनको जो है यहाँ भी वही सिलसिला है, विच इज वेरी सैड समटाइम, कि हम बहुत अच्छा अपने सिस्टम को होगा भी अच्छा होगा सिस्टम, आई डोंट माइंड। लेकिन जो अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले शाही साहब से भी और जो माजी भाई भी बता रहे थे, इट्स रियली सैड। लोग जिनके पास नहीं है 7,500 वो क्या करेंगे?
तुम्हारे तो ये खैर मसले नहीं,
मैं
ये तो हमारे जैसे गरीबों के मसले।
आई ऑलवेज टॉक अबाउट द लिसनर्स,
आई
लव माई लिसनर्स, ये कहते हैं आई लव माई लिसनर्स,
आई लव माई लिसनर्स।
चलें जी खबरें सुना दें, इससे पहले कि हम बाहर हो जाएं तो आप खबरें सुना दें।
अच्छा जी, अब आमिर ने मुझे इतना कोई डिस्टर्ब कर दिया ना कि मैंने पता नहीं क्या खबरें सुनानी है। अच्छा जनाब, दिस फॉरएवर प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह। राजा बादशाह को आपने जाके सबसे पहले गोली देनी है, ठीक है? ये कहना है आपने कि मैं आमिर का दोस्त हूं, बस। फिर आपके 1775 वो बचाएंगे, वो ऑटो और होम इंश्योरेंस देते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, तो वो कहते हैं जी अगर आप मेरे पास आओगे मैं आपके ढेर सारे पैसे बचाऊंगा। अच्छा खाना खाना है, फैजल चड्डा साहब के 2 रेस्टोरेंट्स हैं, उनके पास जाएं आप, एक मिसिसागा में है, एक ओकविल में है, बहुत ही ऑथेंटिक खाने होते हैं उनके रेस्टोरेंट्स पे। इसकी वजह यह है कि जी वो कहते हैं जी वे सारे जो कुक्स हैं वो मैं लेकर आया हूं पाकिस्तान से, तो बड़ी अच्छी जगहों से वो लाए हुए हैं, बहुत अच्छा खाना होता है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा जी, और उसके बाद अगर आपको बंडल पैकेजेस चाहिए, यानी कि बंडल में अगर आपको एक जो है वो 3-4 अप्लायंसेज चाहिए, तो फिर आप जाएं सुल्तान भाई के पास, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे होते हैं और बहुत ही जबरदस्त किस्म के डील्स होते हैं उनके पास, तो आप उनके पास जाइए, ढेरों आपके पैसे भी बचाएंगे और फिर आपको बहुत अच्छे डील्स भी देंगे। और जनाब अदनान अलवी साहब लाइफ टाइम ग्रुप के साथ होते हैं और वो कहते हैं जी मेरे पास भी बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, RESP, RRSP भी है, तो आप अदनान अलवी साहब के पास जाएं, आपको जो है बहुत सारे वो जो हैं अच्छे डील्स देंगे। अच्छा जनाब, ट्रंप साहब की ये जो ऑन गोइंग अब चल रही है ना, ये सारी जो टैरिफ्स की वॉर है, इसके ऊपर जाहिर है कि अब कनाडा के जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी भी बड़ी है, क्योंकि तलवार तो भी लटक रही है ना, अभी 1 महीने के लिए उन्होंने कहा जी डेफर किया है। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद आगे चलेगा ये, करेंगे नहीं टैरिफ्स, लेकिन ट्रंप साहब का कुछ पता भी नहीं होता। तो अब इसके होते हुए एक इंटरव्यू जो है वो सामने आया है ट्रेड मिनिस्टर मैरी इंग जो हैं उनका, और उन्होंने कहा जी कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा जी कि अगर अमरीका हमारे साथ ऐसा करेगा तो आपको क्या लग रहा है कि हम उनको कंसेशंस देंगे? हम भी उनको कंसेशंस नहीं देंगे बिल्कुल, और हम बिल्कुल जो है ये आप सोच रहे हैं कि वी विल कंसीड, नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी कि अमेरिकन जो हैं उनको डेफिनेटली जो है वो जो भी चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हम भी अपने पे करेंगे। उन्होंने कहा जी कि आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ अमेरिका जो बार बार कह रहा है कि कनाडा ने उनका फायदा लिया, अमेरिकन ने भी हमारा बहुत सारा फायदा लिया है, क्योंकि और वो फायदा ले भी रहे हैं, क्योंकि एक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो था हमने सेटअप किया था एज विच वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेड अग्रीमेंट, और उसके अंदर वो कहते हैं जी कि ये जो सेटलमेंट पैनल एक जो था उसने खास तौर पर यह कहा था कि ये जो भी आपने रूल्स बनाए हैं ये हम इसको कनाडा के फेवर में इसकी बात करेंगे, क्योंकि यह जाहिर है कि वो बड़ा मुल्क था तो उसने बहुत सारे उसके फायदे ले लिए थे। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो अब जो हैं ये अग्रीमेंट जो हमने की अमेरिका से, हम अपने ऑब्लिगेशंस को पूरे कर रहे हैं स्पेसिफिकली अराउंड डेयरी, तो अब अमेरिका को चाहिए कि वो भी अपने वादे जो है वो पूरे करें। उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइजेज नहीं करेंगे अगर टैरिफ्स जो है वो नेक्स्ट मंथ लगाए गए, और वो कहते हैं लेकिन इस वक्त हमें पता नहीं है कि हम कोई कंसेशंस कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि अभी जो है टू अर्ली है। जाहिर है कि अभी एक पूरा महीना पड़ा हुआ, तो उसके बाद फिर ये बताएंगे। ऑन्टारियो के जो प्रीमियर हैं जी डग फोर्ड साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह से कि हम रिटेलिएटरी मेजर्स जो हैं वो यूएस के टैरिफ्स पे लगाएंगे अगर उन्होंने हमारे पे लगाया, इंक्लूडिंग जो उन्होंने पहले भी कहा था कि आई विल रिप ऑफ $100 million कॉन्ट्रैक्ट विद इलॉन मस्क स्टारलिंक। और उन्होंने कहा था जी कि मैं ये देख नहीं सकता कि एक आदमी जो हेल बेंट है हमारे प्रोविंस को बर्बाद करने के लिए, तो हम उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। उसने कहा जी कि ये चीजें जो हैं दे विल टेक फूड ऑफ द टेबल्स ऑफ आवर पीपल एंड इट विल डिस्ट्रॉय आवर इकोनॉमी, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये अंदाजा लगा के बताया था कि तकरीबन 5 लाख के करीब जॉब्स जा सकते हैं अगर ये टैरिफ्स आ गए कनाडा के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी कि आप सिर्फ कार मैन्युफैक्चर में देखो कि हम कितने ज्यादा इंटेग्रेटेड हैं, कि जो कार्स के पार्ट्स बनने होते हैं वो भी बैक एंड फोर्थ 8-8 बार जाते हैं। इसके अलावा 4.3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एवरीडे शिप होता है यूएस को, 1.2 बिलियन बैरल्स पर ईयर ये बनता है। और ऑन्टेरियो जो है आमिर साहब ये आपके लिए है, ऑन्टेरियो लाइट करता है 1.5 मिलियन होम्स एंड बिजनेसेस इन मिशिगन, इन मिनेसोटा एंड न्यूयॉर्क। वो जो मैं उस दिन कह रही थी ना, हाँ, अगर पावर बंद की तो ये तीनों जो सिटीज हैं ये काले हैं,
ब्लैकआउट
हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो यही उसकी बात कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जनाब ये 1.5 मिलियन होम्स एंड बिजनेसेस को न्यूयॉर्क, मिशिगन एंड मिनेसोटा को हम लाइट करते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमारे पास हाथ में यानी कि कुछ नहीं है और वो सारा कुछ कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उस पर ट्रंप साहब को सोचना चाहिए। आज जनाब आरसीएमपी की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, ये जो क्रॉस बॉर्डर ये जो इलीगल मूवमेंट है ना इसके ऊपर आज आरसीएमपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एडमिंटन के अंदर, और कमिश्नर लीजा मोरलैंड जो है वो आज रिपोर्टर्स के साथ बात कर रही थी, और उन्होंने कहा जी कि एक आदमी जो है वो मर गया क्रॉस करते हुए यूएस से कैनेडा में एट कूट्स बॉर्डर क्रॉसिंग इन सदर्न अल्बर्टा। उन्होंने कहा जी कि ये जो था जब ये रुका पहली इंस्पेक्शन के लिए तो उसको कहा गया कि सेकेंडरी इंस्पेक्शन तुम करो एट बॉर्डर क्रॉसिंग, लेकिन बजाय इसके कि ये उधर जाता ये भागने लगा नॉर्थ की तरफ इन कनाडा, और जो है फिर अमेरिका की साइड जो थी उसने फिर हमको बताया, फिर ऑफिसर्स इसके पीछे भागे, उन्होंने जो इसका जो है वो रेमंड के करीब अल्बर्टा में इसकी गाड़ी लोकेट की, लेकिन ये जो है वो फिर भी भागता जा रहा था, वो बहुत ज्यादा इसको रुकने के लिए कह रहे थे, फिर चूंकि ये नहीं रुका तो फिर इन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने कहा जी कि हमने फिर डिफ्लेशन जो डिवाइस थी वो बिछाई जिससे कि इसका एक टायर जो है वो पंक्चर हुआ, ये रुका फिर भी नहीं, कहते हैं जी फिर ये गाड़ी से निकल के इसने भागना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद इसके पास एक वो गन थी या कुछ था तो उसमें गलती से जो भी इसने सेल्फ इन्फ्लिक्ट किया, अपने आप को खुद ही इंजर किया और उसी में इसकी डेथ हो गई सीन के ऊपर। इसके साथ साथ वो कहते हैं जी कि जस्ट अ डे बिफोर 4 एडल्ट्स और 5 बच्चे, यानी कि जाहिर है कि 2 फैमिलीज होंगी, दो मियां बीवी और उनके 5 जो थे ये बच्चे, तो ये 9 लोग जो थे ऑलरेडी ऑल टूगेदर, तो ये भी कूट्स के बॉर्डर के ऊपर चेंज कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये इनके हाथों में बड़े बड़े सूटकेसेस थे और बिल्कुल लग रहा था कि ये अब जो है अमेरिका जा रहे हैं, तो कस्टम्स एक्ट के अंडर जो है इनको फिर अरेस्ट किया गया था और सीबीएसए के हवाले किया गया था। तीसरा जो इवेंट है जी वो मैनिटोबा के बॉर्डर पे हुआ है, और वहां पे वो कहते हैं जी कि ये जो है 6 लोग क्रॉस कर रहे थे इमर्सन के एरिया से, कैनेडियन जो अथॉरिटीज हैं उनको अमेरिकन जो है उन्होंने अथॉरिटीज ने बताया, और आरसीएमपी ने फिर इनको ग्रुप को बड़ी मुश्किलों से ढूंढा क्योंकि ये भाग के जो है वुड्स में चले गए थे, और वो कहते हैं जी इन्होंने भी अगेन बड़ा खतरनाक काम किया क्योंकि -20 से -30 डिग्रीज जो था टेम्परेचर था वहां पे, और जो है इन्होंने मैनिटोबा में, तो फिर भी इन्होंने उसकी ना परवाह करते हुए कहा। तो बार बार वो बोल रहे हैं जी कि अब हमने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है और K9 यूनिट्स लगा दिए हैं और बहुत कुछ कर दिया, तो आप ना करें ये हरकतें। बहरहाल कुछ लोगों के कंडीशन का मालूम नहीं होता है, तो इसलिए आज जनाब जो टीजी बैंक के जो क्लाइंट्स थे उनको बहुत ज्यादा मुश्किलें का सामना हुआ। उसका वजह यह है कि जी उनका जो मोबाइल ऐप था और वेबसाइट था वो दोनों ही जो है आउट ऑफ सर्विस दिखा रहे थे। डजन्स ऑफ यूजर्स जो थे उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अपना फ्रस्ट्रेशन शो किया, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये अभी तो दिन चढ़ा है, नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिंग डे है, तो ये इसमें ये क्या हो रहा है। तो उसमें बैंक ने कहा कि हम सोच सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आया इसकी वजह से, टेक्नोलॉजी जब काम नहीं करती है तो हमें ऐसा ही होता है। अलबत्त हमारी जो टेक्निकल टीम है, सपोर्ट टीम, वो उसके ऊपर काम कर रही है और जल्द ही हम उसको रिव्यू करके आपको वजह बताएंगे। आज जनाब जो है काफी GTA के अंदर फ्रीजिंग ड्रिजल एडवाइजरी है। एनवायरमेंट कनाडा जो है उसने कहा है कि फ्रीजिंग ड्रिजल रहेगी जो कि आइस बिल्ट अप में चेंज होगी, रोड्स कॉजवे जो हैं, रोड्स जो हैं और जो पैथवेज हैं और काफी स्लिपरी कंडीशंस रहेंगी और ये आफ्टरनून तक चलेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हाईवेज, रोड्स और वॉकवेज और जो पार्किंग लॉट्स हैं वो भी आईसी और स्लिपरी रहेंगे, और आप जो है बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस रहे अगर आप वॉक कर रहे हैं या कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं। आज बहुत सारे स्कूल बोर्ड्स जो थे अराउंड GTHA वहां पे बसेस जो थे वो कैंसिल रहे और बेशुमार डजन्स ऑफ क्रैशेज जो हुए हैं हाईवेज के ऊपर। OPP ने ड्राइवर्स जो हैं उनको कहा है कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्रिजिड है तो इसलिए अगर आपका एक्सीडेंट हो भी जाता है तो आप गाड़ी के अंदर ही रहो। वैसे तो अगर पॉसिबल होए तो आप रोड पे ही नहीं आओ, लेकिन अगर आपको ट्रेवल करना बहुत ही जरूरी है तो मेक श्योर कि आपके गाड़ी के अंदर गैस भी है और बहुत सारा विंडस्क्रीन वाइपर फ्लूइड भी है, तो ये सोच के आप घरों से। आमिर थी आदत ही नहीं, आमिर थे बिल्कुल जीरो पे आ जाता है पेट्रोल, फिर ये डलने जाता है।
हाँ, फिर फुल करा लेता हूँ।
तो ये अब नहीं करना है, जीरो पे नहीं रखना, उन्होंने कहा हर वक्त तो आपने फुल रखना है, समझ आई। और जनाब आज जो है ऑन्टेरियो में मेन पार्टी के लीडर्स जो थे वो कहां कहां थे वो हम आपको बताना चाहते हैं कि जनाब वो थे आज टोरंटो में और साउथ वेस्टर्न ऑन्टेरियो के अंदर। बॉनी क्रॉम्बी जो थी उन्होंने आज एक हेल्थ केयर से रिलेटेड अनाउंसमेंट किया है टोरंटो के अंदर, फिर वो चली गई थंडर बे। NDP की जो मेरिट स्टाइल्स थी वो हैमिल्टन में थी, उसके बाद वो सूद से मरी गई। डकफोर्ड साहब वाटरलू में थे, वहां पर उन्होंने विजिट किया दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को रीजन के अंदर, और फिर जो है उनका फोकस बहरहाल तीनों का, इन तीनों का अफोर्डेबिलिटी के ऊपर रहा। NDP ने प्रॉमिस किया कि वो होमलेसनेस कैंपेन्स खत्म करेंगे। लिबरल्स ने कहा जी कि वो ऑन्टेरियो के जो डिसेबिलिटी पेमेंट्स हैं उनको हम इंक्रीज करेंगे। जो PC पार्टी है उसने कहा जी कि हम गैस और डीजल का जो फ्यूल टैक्स है उसको बिल्कुल परमानेंट कर देंगे, उस कट को। जो ग्रीन पार्टी के लीडर थे माइक श्राइनर वो गोल्फ में थे, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने एक जो लोकल पार्टी की कैंपेन है उसको फिर लॉन्च किया हैमिल्टन में। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पज़िशकियां, उन्होंने सारे जो OPEC के मेंबर्स हैं उनको बोला है कि हमको यूनाइटेड होने का जरूरत है US सैंक्शंस के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत ही मेजर ऑयल जो ये प्रोड्यूसर्स हैं इनके बारे में ट्रंप साहब ने अभी कहा था कि उनके लिए तो नहीं लेकिन जो ईरान है आई विल ड्राइव इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स टू जीरो। और ये जो आज थी मीटिंग इनकी हो रही थी OPEC के सेक्रेटरी जनरल हेथम अल गेस के साथ, जिसपे कि इन्होंने एक दिन के बाद जब ट्रंप साहब ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन किया है फॉर मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, ताकि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। इसके ऊपर बात करते हुए ट्रंप साहब ने कहा था ये हम सब करना नहीं चाहते हैं, ईरान के साथ हमको उसके दीवार के साथ नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमको ये करना ही पड़ेगा उसको रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन से। ईरान जो है वो अब उसके पास रोटेटिंग OPEC की प्रेजिडेंसी आई है इस साल में, तो उस सिलसिले में जो है इनकी मुलाकातें सेक्रेटरी जनरल से थी। ईरान के जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑयल जो है चाइना को भेजा जाता है। अगर ये वॉल्यूम जो है ये इसका लॉस आ गया, वैसे चाइना तो बात नहीं मानेगा अमरीका की, लेकिन अगर इसमें लॉस आ गया तो फिर ये जो होगा अफेक्ट करेगा तकरीबन 1.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड सप्लाई, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगी मार्केट्स के लिए। तो उन्होंने आज सेक्रेटरी जनरल साहब को गेस को कहा कि जी हम चूंकि डिपेंड करते हैं ऑयल के ऊपर, तो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारे ऑयल एक्सपोर्ट स्टॉप किए जाएं, और हमको जो है और भी कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने जो गोल्स हैं उनको हासिल करने के लिए, और हमारा जो प्रॉब्लम्स भी हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए, और हमको नेबर्स जो है उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन का जरूरत है। तो आज ये उन्होंने जी बातें की। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है जी वो अब स्किप करेंगे G20 की जो टॉक्स जो कि इस साल जो है साउथ अफ्रीका में हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इनके बीच में लड़ाई है वो बढ़ गई है ओवर द कंट्रोवर्शियल लैंड एक्सप्रोप्रिएशन लॉ। रूबियो ने कहा जी कि एक दिन के बाद जब ट्रंप साहब ने थ्रेटन किया था साउथ अफ्रीका को, जब उसने पास किया था लेजिस्लेशन अलाउिंग सीजर ऑफ लैंड्स विदाउट कॉम्पोजिशन इन सर्टन सर्कमस्टांसिस, साउथ अफ्रीका के पास इस वक्त G20 की प्रेसिडेंसी है जो कि रहेगी नवंबर 2025 में, तो वो इस दफा जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट कर रहे हैं जोहान्सबर्ग में फ्रॉम February 20th to 21st। रूबियो जो है उन्होंने अपने एक्स के ऊपर कहा कि साउथ अफ्रीका जो कर रहा है ये बहुत ही बैड है, किसी का ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी कि G20 को वो यूज कर रहे हैं टू प्रमोट एंड सॉलिडिफाई जो है वो ये चीजें, जबकि इस फोरम के ऊपर हम सॉलिडारिटी इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। उन्होंने कहा जी मेरा जॉब जो है इट इज टू एडवांस यूएस नेशनल इंटरेस्ट, और जो हमारा टैक्स पेयर का मनी है वो हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं टू कॉडल एंटी अमेरिकनिज्म। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब के जो क्रिटिक्स हैं वो ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने भी ये क्रिटिसाइज इसको किया है कि ये बहुत ही ज्यादा बैड मूव है। उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट करेगा और इकोनॉमी को हर्ट करेगा और चाइना को बेनिफिट करेगा, तो हम जो है वो उसको बिल्कुल ऐसे माफ नहीं कर सकते। बहुत सारे जो क्रिटिक्स दूसरे भी हैं अमेरिका में, लेकिन उन्होंने लेकिन कहा है कि भई आप ये इतना ज्यादा वाइडर जो लड़ाई है वो आप लोगों के साथ ना लो, और जो है वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप काम करें लेकिन ये इतना लड़ाई भी ना करें। एक भरल जो मेंबर ऑफ कांग्रेस है उसने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, जो ट्रंप साहब की पॉलिसी है वो सही है, बिकॉज इफ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। बेसिकली वो इशारा कर रहे थे मार्को रूबियो की तरफ कि ये जो आप नहीं जा रहे हैं G20 में तो ये आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। इसराइली डेलीगेशन जो है जी सैटरडे को दोहा को विजिट करेगा टू फाइनलाइज द कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ गाजा सीज फायर, और अब ये सेकेंड फेज जो है उसके ऊपर ये करेंगे, और उसमें वो कहते हैं कि जी अपने पॉलिटिकल सिक्योरिटी कैबिनेट रिव्यूज जो हैं ट्रंप साहब के प्लान के मुताबिक उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको पता ही है कि हमने आपको कल भी बताया था कि ट्रंप साहब ने कहा जी कि मैं गाजा जो है वो उसको हम लेना चाहते हैं, और फिर उन्होंने जो है वो कहा कि हम फिलिस्तीनियंस जो है उनको इजिप्ट और जॉर्डन ले ले, जो हमने आपको सारी खबर सुनाई थी और किस तरह दुनिया ने उसके ऊपर रिएक्शन जो है वो शो किया था। तो नतन्याहू साहब ने हमने आपको कल भी बताया था कि बड़ा इस प्लान को हेल किया, उन्होंने कहा इट इज रिमार्केबल, क्योंकि जाहिर है उसको आसानी रहेगी जब सारे फिलिस्तीनियंस चले जाएंगे तो उस पर कब्जा करने के लिए। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो है पीट हैगसेथ जो है बहरहाल उन्होंने कहा जी कि पेंटागन कंसिडर कर रहा है ऑल ऑप्शंस ऑन गाजा, और प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो हर कोई जो है वो बहुत ही आम सी बातें सोचता है, प्रेसिडेंट जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचते हैं और बहुत यूनिक वेज देते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हम एक प्लान बना रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस वॉलंटरी तरीके से यहां से गाजा से चले जाएं, वरना जो वो करते हैं आपको पता ही है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो कंट्रीज जैसे स्पेन आयरलैंड नॉर्वे और दूसरे जो बहुत ज्यादा हमें एक्यूज करते थे कि बड़े हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और ये और वो किए, अगर उनको पैलेस्टीनियंस से इतना ही प्यार है तो फिर वो ऐसा करें कि वो लीगली गाजंस को अपने मुल्क में बुला लें और वहां पर रखें। इसके ऊपर बात करते हुए जो मार्को रूबियो हैं ये जो टॉक्स भी हो रही हैं और ये जो सारा ट्रंप साहब ने कहा है कि हम जो है वो गाजा से आप चले जाएं अभी, तो उसको मार्को रूबियो ने आज एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जी कि ये आप समझ रहे हैं कि ट्रंप साहब बहुत हॉस्टाइल हैं, वो हॉस्टाइल नहीं है। इस वक्त पूरे का पूरा गाजा जो है वो रबल बना हुआ है, तो उसको हम अमेरिकन्स रीबिल्ड करना चाहते हैं। उस रबल के अंदर लोग कैसे रहेंगे, तो जब हम रीबिल्ड कर देंगे तो फिर लोग वापस आ सकेंगे। तो आज लोगों ने बहुत पूछा जी एडा ही प्यार है थोड़ा पैलेस्टीनियंस के नाल, तो वॉर ही ना होने देंगे हैं, तो यार ये गोलियां, मीठी गोलियां जो है आप क्यों काय को दे रहे हो। यूक्रेन जो है वो उसको जी आज फर्स्ट बैच ऑफ फ्रेंच मिराज 2000 फाइटर जेट्स मिले हैं, और इसके अलावा उनको F-16 भी मिले हैं फ्रॉम नेदरलैंड्स। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि हमारा जो कीव का जो एयरफोर्स है उसको ये स्ट्रेंथन करेंगे इन वॉर अगेंस्ट रशिया। यूक्रेन जो है वो रिपीटेडली वेस्टर्न एलाइज को बोल रहा था कि मुझे एडवांस्ड आर्म्स और आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और F-16 जेट्स चाहिए। मिराज 2000 जो है वो लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड जेट्स हैं यूके जो कि यूक्रेन को मिल रहे हैं फ्रॉम इट्स एलाइज, और इससे पहले F-16 जो थे वो समर में इनके पास आए थे। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इन दोनों कंट्रीज का बहुत ज्यादा शुक्रिया बोला है, और उन्होंने कहा जी कि ये अब जेट्स जो हैं हमको हेल्प करेंगे फाइट अगेंस्ट रशिया। लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ये जेट्स जो है मिराज का या F-16 का ये कितना है ये अभी नंबर नहीं सामने आया है। और जनाब कल रात को बड़े अफसोस की खबरें आई, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान उनके घर को आग लगा दी, जबकि उनकी बेटी जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बड़ी एक फायरी स्पीच की सोशल मीडिया के ऊपर। लोग जो हैं ज्यादातर यहां पे और जो है वो पहुंचे हुए थे स्टिक्स से, हैमर्स और दूसरे टूल्स लेकर, और कुछ लोग तो क्रेन्स और एक्सकवेटर्स भी लेकर आए थे, और उन्होंने वो जो बिल्डिंग है उसको डिमोलिश किया। ये रैली जो थी इसको कहा, इसका नाम दिया गया था बुलडोजर प्रोसेशन। तो हसीना साहबा ने जो स्पीच की सोशल मीडिया पे वो अपने सपोर्टर्स के साथ बड़ी नाराज थी। उन्होंने कहा जी कि तुम लोग चुप करके काय को बैठे हो, तुम लोग ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, क्योंकि ये सही नहीं है और ये है। तो इसके ऊपर जी फिर सारे ये लोग निकले, ज्यादातर लोगों का अलाइनमेंट जो था वो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप के साथ था। आपको पता ही है कि इन स्टूडेंट्स के और हसीना के बीच में काफी टेंशन शुरू हुए हैं अगस्त 2024 से, जब जो ये थी हसीना इनको फिर उन्होंने फोर्स किया कि वो भाग के इंडिया चले जाएं, और वो अभी तक इंडिया में ही हैं। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं जी जरदारी साहब, उनकी मुलाकातें हुई हैं जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं ली कियांग के साथ बीजिंग के अंदर, और इसमें इन्होंने डिस्कस किया है सी पैक एंड हाउ टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन फर्दर एट ग्रेट हॉल ऑफ पीपल, यहां पे इनकी मुलाकातें थी। दोनों ने फोकस किया कि अब जो सी पैक 2.0 है उसको आगे कैसे लेके जाया जाए और कैसे कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाए रिन्यूएबल एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर में। इनके साथ थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, और यहां पे जो एमओयू साइन हुए उस सेरेमनी के अंदर ये सारे लोग थे। जरदारी साहब जो थे बीजिंग में आए थे एक 5 डे स्टेट विजिट के ऊपर एट द इनविटेशन ऑफ प्रेसिडेंट शी जिपिंग, और कल जैसे हमने आपको बताया था कि इनकी मुलाकातें शी जिपिंग के साथ कल हुई थी, तो आज जो है प्रीमियर के साथ हुई हैं। पाकिस्तान फेडरेशन फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसने आज एक पिटीशन लाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट एक्ट, पीका जिसको बोला जा रहा है, और इसमें एडवोकेट इमरान शफीक जो थे वो उन्होंने लॉन्च किया था ये केस ऑन बिहाफ ऑफ पीएफयूजे के जो प्रेसिडेंट हैं अफजल बट साहब। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ये जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसके ऊपर एक जो है वो जुडिशियल रिव्यू बिठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि गारंटीड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वायलेट करता है, इसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। कोई ऐसे क्लियर प्रोसीजरल डील नहीं है जिसमें कि आप बोल सकें कि ये फेक न्यूज है, ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कोई प्रोसीजर्स ही आपके पास इन प्लेस नहीं है। पुलिस जो है वो किसी को भी जो है वो किसी भी जो ऑफेंस है उसके अंदर पकड़ लेती है, लेकिन अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें अगर पकड़ेगी तो भी एक जर्नलिस्ट को 3 से 4 साल लग जाते हैं कोर्ट में उसके फैसले करने और उसको कोर्ट को उसको इम्प्लीकेट करने के लिए। तो इसलिए जरा लाइन्स डिफाइन करें और इस जो ये लॉ है इसको हटाएं। पीटीआई के जनाब सीनियर जो लीडर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा जी कि मुल्क में मसले बहुत ज्यादा हैं और उनको एक नेशनल कंसेंसस के साथ ही जो है वो खत्म किया जा सकता है। किसी भी इंडिविजुअल के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो इन तमाम चैलेंजेस को डील करे। उन्होंने कहा जी आज रिपोर्टर्स को अडयाला जेल के बाहर जहां पे उनकी मुलाकातें थी, उन्होंने कहा जी कि मैं पार्टी के मेंबर्स को भी बोलता हूं कि वो एग्री करें ऑन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस तमाम पार्टीज के। उन्होंने कहा जी मैं तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मेंबर्स को मैं बोलता हूं कि एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन को के लिए आप अग्री करें और इसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं है अगर एक इंडिपेंडेंट ईसीपी होएगा और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो होएगा और इंडिपेंडेंट एक मीडिया जो है वो होएगा। उन्होंने कहा जी कि पीपीपी के जो टॉप ब्रास है जरदारी साहब और उनका बेटा बीबी जो है उनको ये भूलना नहीं चाहिए है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इमेज बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन जो है वो डेमोक्रेसी को खराब कर रहे हैं और ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था कंट्री के अंदर अंडर पीका अमेंडमेंट लॉज उसको भी खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो है आप ज्यादा होप्स जो हैं ट्रंप साहब के साथ मत लगाओ जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। हम अपने मुल्क के जो मसले हैं अपने तरीके से अपने स्टैंड में और अपने जो है वो केसेस को निपटा के परस्यू करके जो है उसको खत्म करेंगे, तो इसलिए आप ट्रंप साहब के ऊपर ज्यादा आसरा मत करें। जुडिशरी जो है जी उसके ऊपर आपको पता ही है कि सेवरल चैलेंजेस आते रहते हैं और अभी एक बहुत बड़ी बात जुडिशरी के बारे में कही जा रही है कि जी अपेरेंट कॉन्स्पिरेसी जो है ये प्रो पीटीआई जजेस की देखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसके ऊपर बात करते हुए लीगल एक्सपर्ट रीमा उमर जो है उन्होंने सारे नैरेटिव को जो है नखारा है एक्स के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट का तो काम ही है वो ऐसा नैरेटिव हाईलाइट करती रहती है जो ये शो करे कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है फॉर्मर आईएसआई के चीफ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार एंड आसिफ सईद खोसा गुलजार अहमद उमर अताब बंदयाल जो हैं वो जो उनका जो था नैरेटिव उसको रिफ्लेक्ट करने की ये कोशिश फिर से कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये सारे का सारा फैब्रिकेटेड है। अभी जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस शाह उसके साथ तो करंट सेटअप का बड़ा प्यार था और पीटीआई उसको बड़ा हेट करती थी, लेकिन जब रिजर्व सीट्स पे उसने जजमेंट दिया तो सारी गवर्नमेंट ने बोलना शुरू कर दिया जी कि ये बिल्कुल सही आदमी नहीं है। इसी तरह करंट रूलर्स जो है वो हैप्पी नहीं है जस्टिसेस अब्बासी और सादात के साथ और उनको उन्होंने साइडलाइन किया हुआ है, तो बस वो ये चाहते हैं कि हर जज हमारी मर्जी का जो है वो फैसला दे और अगर कोई वो पीटीआई के हक में फैसला दे देता है तो फिर उसको प्रो पीटीआई और फैज ग्रुप का हिस्सा बोला जाता है। उन्होंने कहा जी कि ये जो हैं जो आप ये कर रहे हैं ये इस तरह की हरकतें इसकी वजह से जुडिशरी के खिलाफ जो है लोग बहुत हो रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो अटेम्प्ट कर रही है एक जुडिशियल कैप्चर का अपना लेजिटिमेसी बनाने के लिए जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसमें जो है ये बिल्कुल गलत है, उसमें ऐसे नहीं करना चाहिए। लाहौर के एंटी करप्शन कोर्ट जो है उसने जनाब क्लियर किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा को इन ऑल चार्जेस इन रमजान शुगर मिल्स केस। जो एंटी करप्शन कोर्ट के जो जज थे सरदार इकबाल डोगर उसने आज वर्डिक्ट दिया। केस जो था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपना अथॉरिटी का मिस यूज करते हुए पब्लिक फंड्स को लगाया था टू कंस्ट्रक्ट 10 किलोमीटर स्लज करियर इन चिन्योर ताकि फैसिलिटेट वो कर सके रमजान शुगर मिल्स के लिए ताकि जो कि इनके बेटे ओन करते थे। नैब ने ये रेफरेंस फाइल किया था फरवरी 18, 2019 में और एक्यूज किया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज को कि उसने अलेजली जो नेशनल एक्सचेकर है उसको 213 मिलियन रुपीज का नुकसान दिया है। रेफरेंस को रीओपन किया गया था नवंबर 2023 में आफ्टर अमेंडमेंट्स जो कि इंट्रोड्यूस किए थे बाय कोलिशन पीडीएम गवर्नमेंट ने और इसको सारा स्ट्राइक डाउन किया था। इन दोनों ने फिर अप्लाई किया था कि ये ट्रांसफर जो है किया जाए इस रेफरेंस को इन सितंबर 2024 टू एंटी करप्शन कोर्ट इन अक्टूबर 2024 बिकॉज उन्होंने कहा कि अंडर दीज अमेंडमेंट्स अब नैब जो है वो प्रोसिक्यूट केसेस नहीं कर सकता है अंडर 500 रुपीज। तो ऐसे और जनाब कुछ अच्छी खबर सुना देते हैं आपको। पाकिस्तान का स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन जिसको स्पार्को बोलते हैं जनाब उसने एक एमओयू साइन किया है विद चाइनाज नॉर्थ स्पेस एडमिन इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी एंड शी जिनपिंग और ये जो है पाकिस्तान के लिए नए दरवाजे खोलेगा फॉर इट्स फर्स्ट इंडिजिनस लूनर रोवर विच इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ चाइनाज चैंग 8 मिशन और जो कि वो लॉन्च कर रहा है इन 2028। इसके होते हुए स्पार्को अपने लूनर रोवर को डिप्लॉय कर सकेगा मून के बिल्कुल साउथ पोल के ऊपर, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग प्लेस है फॉर साइंटिफिक रिसर्च अपने यूनिक एनवायरमेंट के लिए एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए। तो स्पार्को की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने एक और लूनर रोवर जो किया है उसको वो लॉन्च करेगा 2028 में, और ये सारे की सारी जो इनकी ये जो है टेक्नोलॉजी और एवरीथिंग इट इज ऑल इंडिजिनसली जो है डेवलप्ड बाय द पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन पाकिस्तान हु आर पार्ट ऑफ स्पार्को। हाँ
चले जनाब, अब ये पाकिस्तान की खबरें आपने हमारे फर्स्ट सेगमेंट में सुन ली है, बकिया खबरें हम अब ब्रेक ले लेते हैं अजान का, और अजान के सेगमेंट के बाद हम आपके साथ फिर आ जाएंगे। आप हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर, प्रोग्राम साजो आवाज, न्यूज का पार्ट वन अब इख्तिताम हुआ है। आप वैसे हमें 6478724900 पर भी डायल करके सुन सकेंगे, क्योंकि अभी हम जब नमाज के बाद आएंगे तो उस वक्त जो है हमारा जो लोग डायल पर सुन रहे हैं वो फिर हमें नहीं सुन सकेंगे। तो आप एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए जनाब। वेबसाइट अब आपको बहुत ही जबरदस्त, आपको उसमें नई नई जिद्दतें नजर आएंगी। अब आपको पश्तो का एक सेगमेंट भी नया न्यूज का आपको नजर आएगा, तो जो लोग पश्तो समझते हैं और पढ़ सकते हैं तो जनाब आप उसको भी एंजॉय का मजा लीजिए। चलिए जनाब अजान के सेगमेंट की तरफ चलते हैं और फिर वापस आते हैं। हमारा नंबर
416-620-1778। लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। रूह मुजतर ठहर तू निकलना उधर, रूह मुजतर ठहर तू निकलना उधर, इतनी जल्दी भी क्या मैं मदीने चला, इतनी जल्दी भी क्या मैं मदीने चला, मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। हाथ उठते रहे मुझको देते रहे, हाथ उठते रहे मुझको देते रहे, वो तलब से सिवा मैं मदीने चला, वो तलब से सिवा मैं मदीने चला, मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, चल उबैदे रजा मैं मदीने चला, चल उबैदे रजा मैं मदीने चला, मैं मदीने चला نافع کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا
سامع کرم ٹورانٹو گرد و نواح کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، صدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ اپن یہ تن کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام محمد صدیق، آل دا سولوشن، پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا۔
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن، بینکرپسی، انسالوینسی، کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80%، محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں، پرسکون زندگی، اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن۔ اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے، قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577۔
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس، ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس، گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے، تو انتظار کیسا؟ ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ۔ مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666۔ ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس۔
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला।
ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
वेलकम बैक तमाम सामने जो मैं सुन रहे हैं 770 एम पर प्रोग्राम साजो आवाज। अब हम चलते हैं शाजिया मलिक की तरफ न्यूज पार्ट टू की तरफ। जी शाजिया जी।
जी ओके जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय इंडस नेटवर्क सिस्टम्स। आपको पता ही है इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है वो अपना एक बड़ा जबरदस्त फंड रेजर टूर लेकर आ रही है विद इकरा अजीज एंड यासर हुसैन, और ये इवेंट अब कल होने वाला है फरवरी 7th को एट 6:30 PM एट अपोलो कन्वेंशन सेंटर। तो आप भी अगर इस काम में शामिल होना चाहते हैं, कुछ अपने जकात खैरात कुछ देना चाहते हैं, तो आप प्लीज जरूर कल अपोलो कन्वेंशन सेंटर पे जाइए, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 2893721509। ओके अच्छा जनाब, इंडिया के अंदर जो है बहुत ज्यादा आज झगड़ा रहा, बहुत ही ज्यादा आज, क्योंकि एक पार्टी जो थी पॉलिटिकल पार्टी, आपको लगा कि जैसे जो है दिल्ली के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी साथ लड़ाई हो, नहीं उसकी वजह से नहीं, आज जो लड़ाई हुई बेसिकली वो किस लिए हुई है कि जो मैंने आपको कल खबर सुनाई थी कि कुछ अरसे से अमेरिकन जो अथॉरिटीज थी वो कुछ इलीगल इंडियंस को वापस भेज रहे थे, लेकिन परसों तो उन्होंने हद ही कर दी, उनको चेन्स डाल के, उनको शैकल्स डाल के, उनको हैंडकफ्स डाल के, और एक मिलिट्री के प्लेन जो है उसमें भेजा। ये आज जो हिंदुस्तान में शोर मचा सारा, ये इसी बात पे पूछा कि जी ये जो इंडियन डिपोर्टीज हैं इनको शैकल्स में और फिर यूएस के मिलिट्री जो प्लेन है उसके ऊपर क्यों लेकर आए हैं। अच्छा अब इसके ऊपर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे एस जयशंकर साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई ये यूएस का स्टैंडर्ड रिस्ट्रेंड प्रोसीजर है फॉर डिपोर्टेशन, जो कि वो अपने एयरक्राफ्ट किसी में भी कर सकते हैं, और आईस जो है उनकी, यानी कि वो जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स अथॉरिटी जो उनकी है आईस, वो उसने ये रूल बनाया था और इट इज इफेक्टिव सिंस 2012। उन्होंने कहा जी कि ये रूल जो है औरतों और बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं करता है, लेकिन इसके अलावा वो लोग डिपोर्टीज का ख्याल करते हैं, उनको फूड देते हैं, दूसरे नेसेसिटीज देते हैं, मेडिसिन देते हैं कोई इमरजेंसी हो जाए, और अगर बाथरूम में जाने लगते हैं तो फिर इनके ऊपर रिस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं, इनके उतार देते हैं शैकल्स और जाने देते हैं। जबकि बहुत सारे जो डिपोर्टीज अब वहां से आए हैं, खासतौर से जो पंजाबी थे, यानी कि जो पंजाब प्रोविंस के थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम बाथरूम में भी जा रहे थे तो ये हमारे शैकल्स नहीं उतार रहे थे। सोशल मीडिया ने जो पिक्चर्स शो किए थे उसमें ये शैकल जो इंडियंस थे C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के अंदर आए थे। अमेरिका ने अभी रिसेंटली, पहले तो बहुत सारे किए हैं लेकिन अभी रिसेंटली परसों भी 104 इंडियंस जो है उनको डिपोर्ट किया है। कांग्रेस के MP रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है उस पर वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा, उन्होंने कहा जी कि क्या गवर्नमेंट को ये चीज पता है कि 725,000 इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर इलीगल हैं और अमेरिका कोशिश कर रहा है उनको डिपोर्ट करने की, और जो हैं बहुत सारे जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए हैं जिसमें कि इनको रखा हुआ है उनकी कंडीशंस बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के पास काउंसलर एक्सेस है, जो इंडिया की जो एम्बेसीज और जो काउंसलेट्स हैं वो इन लोगों के साथ ताल्लुक रखे हुए हैं। उन्होंने आज बहुत ज्यादा मोदी जी को खींचा, उन्होंने कहा जी अब की बार ट्रंप सरकार जो आप कह रहे थे और 100 करोड़ आपने खर्च किए थे नमस्ते ट्रंप के ऊपर, तो अब आप और आप कह रहे थे कि जी ये जो यूएस है इसके अंदर हम इसके साथ दोस्ती करेंगे और 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर हम क्रिएट करेंगे, तो आपने क्या किया है इसके ऊपर। एक छोटा सा कंट्री जो कोलंबिया की तरह का है वो भी यूएस को बोल रहा है कि हमारे सिटीजन्स को ह्यूमनली आपने जो है ट्रीट करना है, तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अच्छा उन्होंने जब स्पीच रोकी तो डीएमके के जो MP थे तिरुचि एन सिवा, उन्होंने कहा जी कि ये डिपोर्टेशन तो ऑनगोइंग प्रोसेस ही होता है, हमें पता होता है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, शैटल्स में नहीं होना चाहिए और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो इन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में है? उसने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और ये जो लोग जो थे इनके बारे में आपको मालूम था कि इनको डिपोर्ट किया जा रहा है? फिर जी टीएमसी के जो एमपी हैं सेकत गोखले, उन्होंने फिर अपना जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि ये मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट है कि जी ये तो स्टैंडर्ड अमेरिका का प्रोसेस है, ये तो बहुत ही बैफलिंग है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये किसके इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं, एस जयशंकर साहब, यूएस पॉलिसीज को या हमारे खुद के कंट्री के सिटीजन्स के इंटरेस्ट को? इंडियंस जो हैं अभी तक उनको रशियन मिलिट्री में आपने भेजा हुआ है, उनको आप जबरदस्ती वहां पे भेजते हैं। वैसे तो आप कह रहे हैं कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, तो हम अगर इतने बड़े विश्वगुरु हैं तो फिर हमारे सिटीजन्स को ऐसे चेन्स में और टांगों को शैकल्स में डाल के काय को लाया जा रहा है? तो आप जो है कंट्री का इतना बुरा हालत आपने कर दिया है बीजेपी को, उन्होंने कहा जी कि लोग लीगली तो क्या इलीगली मुल्क से भाग भाग के जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जी फिर उसके बाद बारी आ गई, उनके जो एमपी हैं संजय सिंह साहब, उन्होंने भी खूब खींचा आज, उन्होंने कहा जी कि आप छोड़ दो कि यूएस क्या कर रहा है हमारे सिटीजन्स के साथ, आप ये देखो कि जब वो बेचारे डिपोर्टीज आए थे तो उनके लिए आपने प्रिजनर वैन भेजा था, तो प्रिजनर वैन पे अपने खुद के जमीन पे भी अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या सारी दुनिया के छोटे छोटे कंट्रीज जो है वो अपने एयरक्राफ्ट भेजते हैं अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए? तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा काय को नहीं कर रही है। उसके बाद जी आरजे डी के जो एमपी थे मनोज कुमार झा साहब, उन्होंने भी यही बोला कि इंडियन एम्बेसी जो है क्या वो इन डिपोर्टेड लोगों को लीगल कुछ एडवाइस दे रही है, कुछ उनको बता रही है कि आपको कैसा भी बिहेव करना है, क्योंकि इलीगल एजेंसीज जो हैं अभी तक वो तो अभी भी यही बात कर रहे हैं यहां पे कि हम आपको जो आपका फेवरेट कंट्री है उसमें आप भेजेंगे, तो क्या आप उसके खिलाफ कुछ क्रैकडाउन कर रहे हो? क्योंकि ये बहुत ही इनह्यूमन एस्पेक्ट है इस पूरी ये जो डंकी रूट्स हैं और ये सारा कुछ। आपको पता है कि शाहरुख खान की अभी फिल्म भी आई थी डंकी, वो इसी चीज के ऊपर थी। सीपीआई के एम के फिर जो एमपी थे जॉन ब्रिटस, वो फिर खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो ऐसा कुछ डाटा ही नहीं है जिसमें कि हमको मालूम पड़े कि कितने इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर रहते हैं और हमको उसके बारे में गवर्नमेंट को बताना चाहिए और गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा जी, ये जब शोर हंगामा पार्लियामेंट के अंदर हुआ उसके बाद जी फिर ऑपोजिशन ने जो है वो प्रोटेस्ट तेज किया पार्लियामेंट के बाहर और उन्होंने बहुत सारे प्लैक कार्ड उठाए हुए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था ह्यूमंस नॉट प्रिजनर्स, इंडियंस इंसल्टेड, ऐसे करके। तो काफी आज हंगामा रहा। इसके साथ साथ जी जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, दो सिविलियंस जो हैं वो मारे गए इंक्लूडिंग वन ट्रक ड्राइवर, क्योंकि काफी इंडियन पुलिस की मारामारी अभी भी उनके खिलाफ चल रही है। इसमें वो जो है आर्मी की फायरिंग हुई थी बारामूला में जिसमें वो मारा गया। पुलिस ऑफिसर जो है उसने डिटेल्स देते हुए कहा कि जी ये जो फायरिंग थी ये एक कार शोरूम के पास हुई थी संग्रामा के पास, 9 शॉट्स फायर किए गए थे और ट्रक के जो टायर थे वो डिफ्लेट हो गए थे। विक्टिम जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है वसीम अहमद माला जो कि रेजिडेंट है गोरीपुर विलेज का सोपुर में, और वो कहते हैं जी उसको बहुत ज्यादा इंजरीज आए थे। जब उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में लाया गया तो डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर किया। दूसरा जो इंसिडेंट था उसमें एक यंगस्टर था कथुआ डिस्ट्रिक्ट से, जिसको उठा लिया था पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए कि जी तुम किसी मिलिटेंसी केस में इन्वॉल्व हो, और खबर तो ये आई थी कि पुलिस कस्टडी में वो मर गया लेकिन बाद में पुलिस ने कहा जी कि उसने जो है सुसाइड किया है। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर है वो महमूदा मुफ्ती, उन्होंने कहा जी कि ये विक्टिम जिनको कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है मक्खन दीन, 25 ईयर्स उसका एज था, उन्होंने कहा जी कि ये रेजिडेंट था पैरडी का इन बिलावर डिस्ट्रिक्ट में, तो इसकी कस्टडी में मौत हुई है जिसको कि अब पुलिस बोल रही है कि सुसाइड है। तो मगर उसने सुसाइड क्यों किया, उसको आपने इतना शेम दिया कि अगर उसने सुसाइड भी किया है तो उसके होते किया है। और जनाब आज था प्रीमियर लवयापा का और वहां पे बड़े बड़े स्टार पहुंचे हुए थे, जूही चावला जो थी वो भी पहुंची हुई थी और वो अपने पुराने जो बडीज हैं शाहरुख खान और आमिर खान के साथ मिली अपने एक्स और इंस्टा पे, उन्होंने कहा जी मैं आई वाज सो हैप्पी टू सी देम। और फिर जुनेद को भी जो कि आमिर खान का बेटा है वो के उसको के ही हैज बिकम सच अ बिग लीडिंग मैन इन अ फिल्म, तो उन्होंने जो है पिक्चर्स बहुत सारा पोस्ट किया अपना शाहरुख खान का और आमिर खान का, उन्होंने कहा जी कि ये रेयर और प्रेशर प्रेशियस मोमेंट्स हैं। ये दोनों हीरो जो हैं इनके साथ मैंने बहुत काम किया है, मैं हंसी, मैं रोई, हम सेट्स पे बहुत कुछ हमने किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत सारी जबरदस्त फिल्में थी उसके अंदर हमारी क्रेजी मेमोरीज हैं हम सब की। उसके बाद उन्होंने आमिर खान के बच्चों जुनेद और इरा के साथ भी तस्वीरें खिंचाई और जुनेद के बारे में उन्होंने कहा जी जो कि हीरो है इस फिल्म का लवियापा का, उन्होंने कहा जी कि मैंने तो उसको एज अ बेबी देखा था, देखो कैसे जो हैं वो जो साल जो हैं वो दे फ्लाई हुए। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो है इंतहाई वंडरफुल डाउन टू अर्थ बच्चा है और मुझे बहुत पसंद है, गॉड ब्लेस एंड आई विश हिम ऑल द सक्सेस। मुंबई के अंदर जनाब यही जो फिल्म है जुनेद खान और खुशी कपूर की लवियापा, इसके स्क्रीनिंग पे और भी बेशुमार आज सितारे जो थे वो जमा हुए हुए थे और लोगों ने जम के तारीफ की इस रोम कॉम की जो कि कल रिलीज होने वाली है। धर्मेंद्रा ने कहा कि ये तो घर घर की कहानी है और बहुत ही इन लोगों ने नेचुरल एक्टिंग की, कहीं पर भी नहीं लग रहा था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। अली फजल जो है उन्होंने इनको थम्स अप दिया। शबाना आजमी ने कहा वेरी नाइस। जावेद अख्तर साहब ने कहा बहुत कमाल की अलग पिक्चर है। करण जौहर साहब ने कहा कि ये जो फिल्म है इंतहाई जो है हाईली एंटरटेनिंग है और बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर पॉइंट्स ब्रेविटी और प्रिसिजन के जो हैं वो दिए गए हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं आप जरूर ये फिल्म देखो बिकॉज यू विल फॉल इन लव विद द कैरेक्टर्स। और काजोल ने भी कहा इसको कि ये मस्ट वॉच फिल्म है। इसके अंदर जुनेद खान जो कि आमिर खान के बेटे हैं और खुशी कपूर जो कि श्रीदेवी की बेटी हैं वो यानी जाह्नवी की बहन जो हैं वो इसमें काम कर रही हैं। इससे पहले जुनेद ने महाराज में और खुशी ने जो जोया अख्तर की फिल्म आई थी आर्चीज उसमें काम किया था। डायरेक्टर सूरज भरजातिया जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा जी कि ओवर 600 डेज मैंने काम किया है सलमान खान के साथ और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही नेचुरल है और ये इस चीज का ज्यादा परवाह नहीं करता है कि मैं मिस्टेक्स करूंगा या मेरा इमेज क्या आ रहा है, अपना मजाक खुद बनाता है और वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या बोलेंगे,